Iran Radio Podcast.
दूसरे अफीम युद्ध के बाद पूरे चीन में मादक पदार्थों का व्यापार आजाद हो गया। हर तरफ भूखमरी, नशा और गरीबी फैली हुई थी। यह स्थिति देखकर कुछ लोगों के दिमाग में आंदोलन का विचार आया। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 60वां और आखिरी एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। चीनी जन विद्रोह के नेता ने यूरोपीय पादरियों से ईसाई धर्म की कुछ मान्यताएं सीख ली थीं, इसलिए प्राचीन चीनी धर्मों में उनकी आस्था खत्म हो गई थी। जन आंदोलन के नेता और उनके मित्रों ने ऐलान किया कि वो एक ऐसे समाज का गठन करना चाहते हैं जहां कोई भी किसी से श्रेष्ठ न हो। प्रत्येक परिवार के पास काम करने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि होनी चाहिए और अतिरिक्त उपज को सार्वजनिक गोदाम में रखा जाना चाहिए। इस समाज में महिलाएं पुरुषों के बराबर होंगी। बौद्ध और कन्फ्यूशस जैसे प्राचीन धर्मों का वहां कोई स्थान नहीं होगा। विद्रोहियों ने कैंटन बंदरगाह पर नियंत्रण कर लिया और उनका विद्रोह शीघ्र ही चीन के अन्य शहरों में फैल गया। विद्रोही देश की बुरी हालत के लिए सम्राट और उसके दरबारियों को जिम्मेदार मानते थे। उनका लक्ष्य सम्राट को उखाड़ फेंकना था। यूरोपीय देशों और अमेरिका ने शुरुआत में विद्रोह का समर्थन किया। ईसाई धर्म पर इस समूह के ध्यान ने पश्चिमी लोगों में एक आशा पैदा कर दी कि उनकी जीत से चीन के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध बेहतर होंगे। हेराल्ड समाचार पत्र ने लिखा, हम बॉक्सर विद्रोह के नेता को एक प्रगतिशील चीन के दरवाजे खोलने वाला और पश्चिमी दुनिया का मित्र मानते हैं। उनकी स्पष्ट सोच से हमारे व्यापारी मौजूदा कठिनाइयों पर काबू पाएंगे। विद्रोही गुट ने के जिसे बॉक्सर्स के नाम से जाना जाता था, करीब हर मोर्चे पर सफलता हासिल की। कुछ ही समय बाद चीन का एक बड़ा हिस्सा उनके नियंत्रण में था। आंदोलनकारी नेता अब अपना संदेश सभी लोगों तक पहुँचा सकते थे। ये संदेश कि उनके नियंत्रण वाले इलाकों में मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बॉक्सर्स के बारे में पश्चिम की नज़र बहुत जल्द बदल गई। हेराल्ड अखबार ने उन्हें विनाशकारी लुटेरा बताते हुए लिखा, हमें इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि आखिरकार इस विद्रोह का दीर्घ अवधि में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इससे व्यापार को बहुत नुकसान हो रहा है। चीन में ब्रिटिश राजदूत ने अपने देश के विदेश मंत्री को लिखा, चीनी सरकार का बचाव करना बेहतर है, भले ही वो एक बुरी, भ्रष्ट और अज्ञानी सरकार है। अमेरिकी प्रतिनिधि ने अपने देश के विदेश मंत्रालय के साथ पत्राचार में लिखा, ये विद्रोह जिसके लिए हम शानदार परिणामों की उम्मीद कर रहे थे, अब एक शैतानी राजद्रोह माना जा रहा है। अमेरिका और यूरोप ने चीनी सम्राट की मदद करना शुरू कर दी। हालांकि इससे पहले इन्हीं लोगों ने चीन की सबसे बड़ी बंदरगाहों को मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया था, ताकि उन्हें अपने माल के आयात के लिए चीनियों को कुछ भी भुगतान ना करना पड़े। अब सीमा शुल्क का भुगतान फिर से शुरू हो गया। उन्होंने सम्राट की सेना को हथियार भेजे और उन्हें विशेषज्ञ इंजीनियरों से युक्त उन्नत जहाज उपलब्ध कराए, लेकिन बॉक्सर्स प्रगति करते रहे, यहाँ तक कि वो बीजिंग पहुँच गए। बीजिंग में उनका पहला काम उस इलाके को घेरना था जहां पश्चिमी दूतावास स्थित थे। इस स्थिति के कारण इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, जापान और इटली को अपनी सेनाएं चीन भेजना पड़ी। विदेशी सैनिकों ने सम्राट की सेना के साथ मिलकर बॉक्सर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। खूनी लड़ाई के बाद अंततः बॉक्सर्स को पीछे हटना पड़ा। बॉक्सर विद्रोह 14 वर्षों तक चला, जिसके दौरान लगभग 40 मिलियन चीनी लोग मारे गए। चीनी सम्राट अब पहले की तुलना में बहुत कमज़ोर हो गए थे। एक और विद्रोह के दौरान उन्हें अपने प्रांतों के शासकों को कई स्वतंत्रताएं और शक्तियां देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब इन शासकों के पास अपनी स्थानीय सेनाएं थीं और वे एकत्र किए गए करों को दरबार में भेजने के बजाय उनका इस्तेमाल यूरोपियों से हथियार खरीदने के लिए करने लगे। दूसरी ओर सम्राट को बॉक्सर्स के चंगों से बचाने वाले पश्चिमी देशों ने उसके सभी मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने मंत्रियों को बर्खास्त करके उनके स्थान पर अपने मित्रों को नियुक्त करवा दिया। उन्होंने चीन के कर और सीमा शुल्क प्रशासन पर कब्जा कर लिया और इन विभागों से कई हजार चीनी कर्मचारियों को निकाल दिया। सम्राट विरोध नहीं कर सके क्योंकि पश्चिमी लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर इस बार लोगों ने विद्रोह किया तो वे उनकी मदद नहीं करेंगे। यूरोपियों ने चीनियों के साथ नई संधियों पर हस्ताक्षर किए। 90 चीनी बंदरगाहों को मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। यूरोपीय व्यापारी इन बंदरगाहों में 99 वर्षों के लिए भूमि पट्टे पर ले सकते थे और वहां कारखाने, बैंक और कंपनियां स्थापित कर सकते थे। वे चीन में रेल मार्गों का निर्माण कर रहे थे और रेल मार्गों के आसपास खनन रियायतें हासिल कर रहे थे। इन यूरोपीय लोगों के पास अपना स्वयं का पुलिस बल था, इसलिए इस तरह के क्षेत्र पूरी तरह से चीनी नियंत्रण से बाहर हो गए। इस प्रकार मंचूरिया और शानडोंग जैसे क्षेत्र पूरी तरह से रूसियों और जर्मनी के हाथों में चले गए। चीनी सम्राट को विद्रोह के दौरान पश्चिमी देशों द्वारा दी गई सारी सहायता की एक एक पाई वापस करनी पड़ी। उस वक्त पश्चिमी देशों ने एक अनुमान लगाया कि चीन को दी जाने वाली सहायता 333 मिलियन थी। इसी अनुपात से पश्चिमी देशों ने चीन से वसूली की। दूसरे अफीम युद्ध में चीन की हार के बाद फ्रांसीसियों ने वियतनाम को चीन से अलग कर दिया और करीब 80 साल तक उस पर राज किया। इस दौरान फ्रांसीसी शासन ने कृषि से संबंधित कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जिससे वियतनामी किसानों को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ा। अक्सर वियतनामी बच्चे और युवाओं को पढ़ाई करने की अनुमति नहीं थी और 2% लोग स्कूल की पढ़ाई पूरी करने में सफल रहे। उनमें से बहुत कम ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके बावजूद युवा फ्रांसीसी लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्हें उपयुक्त नौकरी पाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता था। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में जापानियों ने वियतनाम पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंततः उन्हें अपने कब्जे वाले सभी क्षेत्रों से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। फ्रांसीसी फिर से वियतनाम लौट आए, लेकिन युद्ध के दौरान वियतनामी लोगों ने कब्जाधारियों से लड़ने के लिए एक मुक्ति संगठन की स्थापना की थी। यही संगठन एक भीषण युद्ध में फ्रांसीसियों को हराने और उन्हें वियतनाम से बाहर निकालने में सफल हो गया। वियतनाम से फ्रांसीसियों के भाग जाने के बाद अमेरिकियों को डर था कि वियतनाम सोवियत संघ समर्थित राज्य बन जाएगा, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को इस देश में भेज दिया और उस पर कब्जा कर लिया। वियतनामी लोगों और अमेरिकियों के बीच हिंसक, खूनी और लंबा युद्ध चला, लेकिन अंततः 1975 में वियतनामियों की जीत के साथ इसका अंत हो गया। अमेरिकियों ने इस युद्ध में 9,25,000 निर्दोष वियतनामियों का नरसंहार किया और उन जंगलों को नष्ट करने के लिए एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया जहां वियतनामी सैनिक शरण लेते थे। यह रसायन न केवल पेड़ों के लिए बल्कि मनुष्यों के लिए भी खतरनाक था। कई वियतनामी ग्रामीण एजेंट ऑरेंज से मर गए। और वियतनाम युद्ध की समाप्ति के लगभग 50 साल बाद अब भी देश में विकृत बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण वातावरण में एजेंट ऑरेंज का फैलाव है। अमेरिका 19वीं सदी के अंत तक कई यूरोपीय देशों से अधिक शक्तिशाली हो चुका था। उसकी उन इलाकों पर भी नज़र थी जो कमज़ोर पड़ जाने वाले स्पेन के नियंत्रण में थे। अब स्पेन उतना शक्तिशाली नहीं रहा था जितना वो पिछली शताब्दियों में था और वो अपने कब्जे वाले देशों में विद्रोहियों को दबाने में सक्षम नहीं था। ऐसा ही एक देश फिलीपींस था। जबरन मजदूरी, कृषि भूमि पर कब्जा और लोगों का जबरन धर्मांतरण करने के स्पेनिशों के प्रयासों के कारण फिलिपिनियों ने उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। स्पेनिशों के खिलाफ फिलिपिनियों का सबसे बड़ा विद्रोह 1892 में शुरू हुआ। कातिपुनान नामक एक गुप्त संगठन आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। इस संगठन में 30,000 फिलिपिनी लड़ाके शामिल थे। कुछ समय बाद राजधानी मनीला को छोड़कर संपूर्ण फिलीपींस पर फिलिपिनी लड़ाकों का नियंत्रण हो गया। ऐसे समय में अमेरिकियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश का निर्णय लिया। वे फिलीपींस के लोगों की मदद करना चाहते थे, जबकि फिलिपिनी युद्ध के लगभग अंतिम चरण में थे। अमेरिकियों ने फिलिपिनी लड़ाकों के निर्वाचित नेता को वापस बुला लिया। उसने तुरंत देश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अमेरिका ने फिलिपिनी लड़ाकों से कहा कि वो उसके सैनिकों की मनीला की घेराबंदी में भाग लेने की अनुमति दें, जो अभी भी स्पेन के कब्जे में था। आंदोलनकारियों के नेता ने अमेरिकियों पर भरोसा करते हुए उनके लिए अंतिम मोर्चे के प्रवेश का रास्ता खोल दिया। फिलीपींस की राजधानी मनीला को तेजी से आज़ाद करा लिया गया और देश के भविष्य को लेकर बातचीत शुरू हो गई। तय पाया कि वार्ता पेरिस में होगी। इस वार्ता में स्पेन ने फिलीपींस को अमेरिका को सौंप दिया। अमेरिका ने बहुत ही कम नुकसान उठाकर और लड़ाई के अंतिम चरण में दाखिल होकर इस देश पर कब्जा किया। लेकिन फिलीपींस कोई तरने वाला नहीं था जो आसानी से अमरीकियों के गले से नीचे उतर जाता। अभी तक इस देश के लड़ाकों ने हथियार ज़मीन पर नहीं रखे थे और वो पूर्ण आज़ादी के साथ प्रतिबद्ध थे। उन्होंने 2 साल तक अमेरिका को नाको चने चबवाए, लेकिन फिर उनके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका ने कहा, एक वक्त था जब एक हीरो की तरह इस नेता को देश में वापस बुलाया था। अब उसे अपनी वफादारी की कसम खाने के लिए मजबूर कर दिया। उसे मजबूर किया गया कि वो अपने साथियों से आत्मसमर्पण की अपील करे। इसी के साथ अमेरिकियों को लगा कि बगावत खत्म हो गई है। अमेरिकी सैनिकों के एक समूह ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति के समक्ष परेड की और अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि हमने फिलीपींस में जीत हासिल कर ली है। हालांकि गुरिल्ला लड़ाके हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने हमले तेज कर दिए, जबकि अमेरिकियों ने उन ग्रामीणों का दमन जारी रखा जो लड़ाकों का समर्थन करते थे और वे अधिक क्रूरता के स्थानीय लोगों का दमन करते थे। ये प्रतिरोध अगले 5 वर्षों तक यानी 1906 तक जारी रहा। इस लड़ाई में किसी भी देश ने फिलिपिनी योद्धाओं का समर्थन नहीं किया। हथियारों और उपकरणों की कमी के कारण अंततः प्रतिरोधकर्ताओं ने हथियार डाल दिए। फिलीपींस पर कब्जे से सबसे ज़्यादा खुशी पूंजीपति अमेरिकियों की थी। एक अमेरिकी बैंकर ने, जो अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य भी था, अमेरिका के उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी कर दी। उसने कहा, अमेरिकी लोग अपनी आवश्यकता से $2 अरब अधिक माल का उत्पादन करते हैं। अब हमें इस माल को खपाने के लिए फिलीपींस जैसे बाजार की ज़रूरत है। 1898 में जब फिलीपींस युद्ध में शामिल हुआ, पेरिस में देश के भविष्य पर बातचीत कर रहे थे तो फिलीपींस के प्रतिनिधि भी पेरिस गए, लेकिन अमेरिका के सुझाव पर उन्हें बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई और देश के आधिकारिक प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में फिलीपींस को अमेरिका को सौंपने का समझौता कर लिया गया। 15वीं शताब्दी में जब पुर्तगालियों ने सपनों की भूमि एल डोराडो तक पहुँचने के लिए महासागरों का सीना चीर कर समुद्री यात्राएँ शुरू की, तब से लेकर आज तक इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और कई अन्य यूरोपीय देश एशिया और अफ्रीका में अपने लिए संभावनाएं खोजते रहे हैं। आज भी इन देशों के लिए युद्ध में निवेश करना सबसे अधिक लाभदायक निवेशों में से है। उपनिवेशवादियों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। मानवाधिकार और बच्चों का जीवन कुछ भी नहीं। वे केवल अपनी पूंजी से मुनाफा कमाना चाहते हैं। पूंजी भी वो जो वास्तव में उसी युद्धग्रस्त और एक कब्जे वाली भूमि की है, एक ऐसी भूमि जिसे नष्ट करने में कल के उत्तराधिकारियों और उपनिवेशवादियों और आज के मानवाधिकार ठेकेदारों ने भूमिका निभाई। दोस्तों, इतिहास सदियों से खुद को दोहराता आ रहा है। आइए हम इससे सबक सीखें और अच्छी तरह से ये समझ लें कि इन साम्राज्यवादी शक्तियों और अवसरवादियों का कोई ऐसा मौका नहीं आना चाहिए जिससे ये फिर अपने मकसद में कामयाब हों। अब समय आ गया है कि हम इतिहास के पन्नों को पलटें और स्वयं इस पर नई इबारत लिखें। दोस्तों, आपने जो पॉडकास्ट सुना वो ईरान रेडियो हिंदी द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप और भी दिलचस्प विषयों पर पॉडकास्ट सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट देख सकते हैं iranradio.ir/hi।